है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
चाहूं मैं तुझको दिल से खुदा, संग तेरे गुजरे हर पल मेरा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि प्रभु यीशु मलकीसिदक की रीति पर हमारा महायाजक है और वह सिद्ध है। वह स्वर्गिक महापवित्र स्थान में परमेश्वर के साथ बैठा है और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रभु यीशु सदाकालीन सिद्ध याजक है। तो इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। यद्यपि कि हम दूर में बैठे हैं, परंतु आपके वचन को रेडियो के माध्यम से एक साथ सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक भाई बहन आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय बीमार अवस्था में है, निराश और परेशान है। पिता परमेश्वर, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, आज के वचन के द्वारा होने दे कि वे जाने पाए कि आप उनकी समस्याओं को जानते हैं, आप उनकी सहायता करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी विनती सुनने के लिए। प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम आज देखेंगे प्रभु यीशु सदाकालीन सिद्ध याजक है, तो आप मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 23 पद को निकाल लीजिए। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मनुष्य उन्हें रहने नहीं देती थी। दूसरे शब्दों में, पुराने नियम में हारून के वंश के याजक मरणहार थे। हारून भी मूसा के समान एक दिन मर गया। मैं सदा यही सोचता हूं कि मूसा के समान हारून की मृत्यु भी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा अनर्थ थी। उन्होंने जंगल में उनके साथ चलने वाले एक महायाजक को खो दिया था। वह उन्हें और उनकी परिस्थिति को समझता था। हारून के बाद उन्हें एक और महायाजक की आवश्यकता पड़ी। परंतु हमें महायाजक बदलने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु हमारे लिए मध्यस्थता करने को सदा जीवित है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु एक ही बार मरा और फिर जी उठा। अब वह कभी नहीं मरेगा, वह हर समय उपलब्ध है। एक व्यक्ति रात के 11:30 बजे हमारा रेडियो कार्यक्रम सुनता है, परमेश्वर का आत्मा उसे वचन की सेवा प्रदान करता है। मैं तो जानता भी नहीं था कि वह हमारा बाइबल अध्ययन रेडियो कार्यक्रम पर सुनता है, परंतु प्रभु यीशु उसे बहुत पहले से जानता था, क्योंकि उसकी याजक सेवा 24 घंटों की है। वह उसे 11:30 बजे पर भी जानता है और समझता है और उसे वचन की सेवा प्रदान करता है। यही कारण है कि मैं वचन प्रसारण से आनंदित हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा मनुष्य में सेवारत है। प्रभु यीशु महायाजक है। मैं तो 11:30 बजे रात में सो रहा होता हूँ, परंतु हमारा महायाजक वचन को प्रभावी बना रहा है। यह कैसी अद्भुत बात है। हम उसकी स्तुति करें, उसका महिमान्वन करें। मेरे प्रियो, निम्न पद इस संपूर्ण अंश का मुख्य पद है और सुसमाचार का केंद्र है। तो आइए हम ध्यान से पढ़ें इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय उसके 25 पद को। लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यहाँ पर शब्द है इसीलिए, यह भी बड़े दरवाजे का कब्जा है। पहले जो कहा गया है और आगे जो कहा जाएगा इसी के द्वारा जुड़े हुए हैं। लिखा है सर्वदा जीवित। वह कहता है कि प्रभु यीशु मृतक नहीं परंतु जीवित है। वह इस पल भी जीवित है। हम प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर ध्यान देते हैं, परंतु हमें इससे भी आगे जाना है, क्योंकि वह जीवित है। आज हम उसे दैहिक रूप से नहीं जानते हैं, हम उसे आज अपने महायाजक के रूप में जानते हैं जो परमेश्वर के साथ दाहिनी ओर बैठा है। हमें इसी बात पर ध्यान देना है। जी हाँ, वह इस पृथ्वी पर मरा कि हमारा उद्धार हो, और वह स्वर्ग में जीवित है कि हम उद्धार में बने रहें। हम पढ़ते हैं, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। वह आपको उद्धार देता रहता है। वह हमें पूरा और सिद्ध उद्धार प्रदान करता है। वह एक महान चरवाहा है जिसने अब तक एक भी भेड़ नहीं खोई है। क्या आप एक बात जानना चाहते हैं? वह अपनी एक भी भेड़ को खोने नहीं देगा। यदि आप उसकी भेड़ हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप खो जाएंगे, तो जान लीजिए कि वह आपके लिए स्वर्ग में उपस्थित है और अपनी निगरानी आप पर रखता है। हम पढ़ते हैं, वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। जी हाँ, विनती करने का अर्थ है हस्तक्षेप करना। रोमियो के पत्र 5:10 में लिखा है, उसके जीवन के द्वारा हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। 1 यूहन्ना 2:1 में हम पढ़ते हैं, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। सहायक अर्थात शांति देने वाला। वह हमारे साथ खड़ा होता है। वह जो कुछ करता है वह सब उचित है। वह धार्मिकता के काम ही करता है। हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाते हैं। मेरे मित्रों, यह जानना कैसा अद्भुत है कि हमारे पास जीवित प्रभु यीशु है। मेरे मित्र, आप अकेले नहीं हैं। समस्याओं पर रोना शिशु का सा स्वभाव है। मैं किसके पास सहायता मांगने के लिए जाऊं? मैं अकेला हूं। आप क्या सोचते हैं कि वह वहां स्वर्ग में कर क्या रहा है? क्या आपको उसकी उपस्थिति का बोध नहीं है? आप उसके पास क्यों नहीं जाते हैं? मुझे एक महिला से वार्तालाप करने का स्मरण आता है। उसका पुत्र अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री के साथ जी रहा था। उस स्त्री से बात करने के लिए मैं इस महिला को साथ ले गया। वह स्त्री उसके साथ जीवन निर्वाह के प्रति दृढ़ संकल्प थी। यह अभागी माँ मेरे घर पर आई और गिरकर रोने लगी, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परंतु जब मैं उसे ले आया तब वह शांत हो गई थी और अपने क्षमा याचना करते हुए कहा, मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। मुझे विश्वास नहीं कि वह मुझे छोड़ेगा। मैंने उससे विश्वास दिलाया कि वह हमारे लिए विनती करता है और वह जीवित है। हम अविश्वासी हो जाएं तो भी वह विश्वास योग्य है। मेरे मित्रों, यह जानना अति अद्भुत है कि वह स्वर्ग में जीवित है। इब्रानियों की पत्री 7:26 में लिखा है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। लिखा है हमारे योग्य था, अर्थात जिसकी हमें आवश्यकता थी। हमारे लिए यथा उचित एक याजक है। उससे अच्छा दूसरा कोई नहीं हो सकता। तब हम पढ़ते हैं, पवित्र, परमेश्वर के समक्ष वह पवित्र है। लिखा है निष्कपट, अर्थात वह बुराई चतुराई या युक्तियों से रहित है। वह आपको पाप से बचा लेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह एक चतुर वकील है, परंतु इसलिए कि उसने आपके स्थान पर दंड उठाया है। उसने पूरा पूरा दंड उठाया है। और आगे देखते हैं, निर्मल, अर्थात किसी भी प्रकार की अनैतिकता से शुद्ध। मेरे मित्रों, यह निंदक सिनेमा गीत और साहित्य के लिए परमेश्वर का उत्तर है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि प्रभु यीशु नैतिक अशुद्धियों से रहित है। लिखा है पापियों से अलग। जी हाँ, वह हमारे समान तो था, परंतु फिर भी हमसे अलग था। वह पापियों के साथ सहभागिता रखता था। वह उसकी उपस्थिति में असुविधा का बोध नहीं पाते थे, परंतु वह अलग था। उसके बैरी उसे चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ उठने बैठने का दोष देते थे। वह निश्चय ही उनकी संगति में बैठता था, परंतु वह उनमें से एक नहीं था। वह पापियों से अलग था। इब्रानियों की पत्री 7:27 में लिखा है, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु को अपने पापों के लिए बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह निष्पाप था। यदि आवश्यक हो तो वह फिर से आकर आपके लिए जान दे देगा। जी नहीं, वह आएगा परंतु जान नहीं देगा। उसने एक बार अपनी जान क्रूस पर दे दी है। पुराने नियम के बलिदान उबाऊ और थकाने वाले हो गए थे। मेरे विचार में स्नान के समय वे एक दूसरे से पूछते होंगे, आप आज कितनी बार नहाए हैं? दूसरा कहता, पता नहीं, एक दर्जन बार तो हो गया होगा। मैं तो इस काम से थक चुका हूँ। मेरे हाथ और पांव को देखो, कैसी दुर्दशा हो गई है। यदि हारून उनकी बातें सुनता तो कहता, मैं मानता हूँ कि यह थका देने वाला काम है, परंतु आप क्या जानते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है? वह कहना चाहता है कि पाप एक भयानक दशा है और उसमें लहू बहाने की आवश्यकता है, और वह एक ऐसे मनुष्य को भेजने वाला है जो हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान देगा और उसके बाद लहू बहाने की आवश्यकता कभी नहीं होगी। वह दंड चुका देगा और हम सबकी सहायता करेगा। इब्रानियों के पत्र 7:28 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। मेरे मित्रों, पुराने नियम में महायाजक को अपने लिए भी बलि चढ़ाने की आवश्यकता थी, परंतु प्रभु यीशु को नहीं। आज हमारा महायाजक छुआ जा सकता है, हम उसके निकट जा सकते हैं, वह हमारी सहायता के लिए है। जी हाँ, वह समझता है, वह पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है और पापियों से अलग है। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर भी देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इसी के साथ 7 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को 8 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है सच्चा मिलाप वाला तंबू, पुरानी से उत्तम नई वाचा। इस महान पत्री की प्राकाष्ठा इस अध्याय में है। वैसे तो इसका आरंभ पिछले अध्याय 25 में हो चुका था, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यहाँ बल इस बात पर दिया गया है कि प्रभु यीशु जीवित है। वह ना तो क्रूस पर है और ना ही कब्र में है, वह मृतकों में से जी उठा है। 26 में हम पढ़ते हैं, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। वह परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र, क्रोध रहित, किसी की हानि न करने वाला और किसी भी प्रकार की अनैतिकता से रहित है। वह स्वर्ग से भी ऊंचा अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में है। 27 में उसके बलिदान का महत्व प्रकट किया गया है। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। उसने पशुओं, सोना चांदी की अपेक्षा स्वयं को ही बलि चढ़ा दिया। उससे अधिक मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। 28 में हमने पढ़ा, व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए नियुक्त किया गया है। मेरे प्रियो, यीशु में विश्वास करके आप मनुष्य पर नहीं नरहरि पर भरोसा रखते हैं। मनुष्य होने के कारण वह आपके साथ सहानुभूति दर्शा सकता है और आपकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। वह एक राजसी याजक है, वह एक धर्मी याजक है, वह शांति को लाने वाला याजक है, वह आपके लिए व्यक्तिगत रूप से याजक है। वह इस पद का उत्तराधिकारी नहीं है क्योंकि वह हारून का वंशज नहीं है, वह एक अनंत याजक है। मेरे मित्रों, अध्याय 8 में कहा गया है कि वह एक उत्तम वाचा के अधीन उत्तम पवित्र स्थान में सेवा करता है जो उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। अब हम देखेंगे सच्चा मिलाप वाला तंबू। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय के 1 पद में लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। हम पढ़ते हैं सबसे बड़ी बात अर्थात ध्यान का केंद्र। हमारा यह महायाजक स्वर्ग में महामहिमन के दाहिने हाथ बैठा है। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि यह अंश इब्रानियों की पत्री की परिकाष्ठा है। लिखा है जो स्वर्ग पर सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। प्रभु यीशु ने वह काम किया जो पुराने नियम में कोई भी याजक नहीं कर पाया था। हारून वंश के किसी भी महायाजक के पास परम पवित्र स्थान में बैठने के लिए आसन नहीं था। वह सदैव व्यस्त रहता था। क्यों? क्योंकि उसके पास काम था। यह सब एक सिद्ध कार्य की छाया थी। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद सब कुछ पूरा हो गया है और अब हमें उद्धार के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आज मुझे और आपको किसी भी प्रकार के बलि को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के भेंट या दान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए बलि हो गया। एक ही बलि सारे मानव जाति के लिए किया गया है और वह है प्रभु यीशु मसीह। मेरे मित्रों, हमें तो बस प्रभु यीशु में विश्वास करना है कि वह हमारा उद्धार करता है। वह बैठ गया क्योंकि उसने पाप मुक्ति का काम पूरा कर दिया है। वह तो बस यही कहता है कि हम उसे स्वीकार करें, हम उसके पास आ जाएं, उस पर विश्वास करें कि वह हमारा मुक्तिदाता है। क्योंकि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में यीशु के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सिर्फ यीशु ही है जो हमारे लिए मरा। इब्रानियों के पत्री 8 अध्याय उसके 2 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिएगा, बजलील को पवित्र आत्मा की अगुवाई में मिलाप वाले तंबू में सब साज सज्जा और दया आसन तथा सोने के दीपदान आदि बनाने का काम दिया गया था। प्रभु उस मंदिर में सेवा करता है जो उसने स्वयं स्वर्ग में बनाया है। जी हाँ, यह मंदिर स्वर्ग का प्रतिरूप था जो इस पृथ्वी पर भी बनाया गया था। मेरे मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के भवन में आने के लिए एक महायाजक होता था जो सारे इसराइलियों के पापों के लिए बलि चढ़ाता था, और इससे पहले वह अपने आप को भी शुद्ध करता था और अपने निमित्त भी बलि चढ़ाता था। परंतु प्रभु यीशु के आने के बाद यह प्रथा समाप्त हो गई है। इन सारी बातों को उसने पूरा कर लिया है। प्रभु यीशु स्वयं ही पाप बलि बन करके सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर मर गया। उसने अपने पवित्र लहू बहा दिए और यही कारण है कि वह मर गया और मृतकों में से जी उठा, और आज भी वह जीवित है और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह हमारी प्रार्थना को सुनता है, वह हमारा महायाजक है, वह हमारा मध्यस्थता है जिसके पास हम जा सकते हैं और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने उस महायाजक को जान लिया है जो आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता है? क्या आप उसे अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं? यदि नहीं तो आज आपके पास मौका है कि आप उसे अपने जीवन में आने दें, क्योंकि वही आपके पापों को क्षमा कर सकता है, वही आपको उद्धार का आनंद दे सकता है। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने उस महायाजक को जान लिया है जो सिद्ध है, जो आपके लिए मध्यस्थता का काम करता है। आप उसके पास आए, उसमें बढ़ें, उसे जानें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। बिना भक्ति अधूरी, क्रिस्त शरण तुझे आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति बल, क्रिस्त में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, क्रिस्त शरण तुझे आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति बल, क्रिस्त में मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य मनाना है। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे।